प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 6 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के लाइफ मैनेजमेंट में हमें उसी विषय को बढ़ाना चाहिए जिस विषय के बारे में कल हम लोग बातें कर रहे थे। और कल का हमारा विषय था आइंस्टीन की निगाह में ईश्वर। दोस्तों, मैंने ये फैसला खासकर इसलिए किया है कि क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, जिसका महसूस ही क्या होता है बल्कि सच पूछे तो जिसकी हम सबके जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका है और हम सब बड़े उसे खुलेआम स्वीकार भी करते हैं कि जो धर्म है, चाहे हम किसी भी धर्म में क्यों न पैदा हुए हों, किसी भी धर्म को क्यों न मानते हों, लेकिन उसका हमारे जीवन पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव रहता है। कहीं न कहीं हमारे जो संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारी परंपराएं बहुत कुछ धर्म से ही पैदा होती हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, जिसे अगर मैं आप इजाजत दें तो एक तरीके से लाइफ फिलॉसफी कहना ज्यादा पसंद करूंगा। बेसिकली धर्म मेरे लिए एक जीवन दर्शन ही है। और सच पूछे तो जो वैदिक काल जो रहा है उसमें उस काल के पूरे के पूरे विचारों को हम एक दार्शनिक तत्व ही कहते हैं, वो कोई धर्म नहीं है। यह बात अलग है कि फिर वो दर्शन से धर्म पैदा होता है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करके और इन्हें इसे समझना ज्यादा बेहतर होगा, हम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। हाँ, मैं ये बात आपसे जरूर कहूंगा कि जो डियर जिंदगी की मैंने बात की है, कल से डेफिनेटली हम लोग उस पर बातें करेंगे। मित्रों, कल मैंने आप लोगों को एक लेख प्रोवाइड किया था गुप्त काल के ऊपर, प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की थी। अगर आप लोगों ने उसे पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि उसमें एक वाक्य उन्होंने यूज किया है, थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब भी किया है कि बौद्ध धर्म के बाद भारतीय समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन आया और वह परिवर्तन उसके भौतिक जीवन में दिखाई दिया। नगरों का विकास होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्रों में जो गुप्त काल तक आते आते बहुत ज्यादा यूं कह लीजिए कि साकार रूप ले लिया। तो मित्रों, हमें सामान्य रूप से लगता है कि बौद्ध धर्म से भला भौतिक विकास का क्या संबंध, क्योंकि बौद्ध धर्म तो कहीं न कहीं चूंकि वो इच्छाओं को दुख का कारण मानता है और भौतिक जो स्थितियां होती हैं वो इच्छाओं को पैदा करती हैं, तो भौतिक विकास क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये बात हमें विश्वसनीय सी नहीं लगती। मैं उसी पर आपको आज थोड़ी सी बात करने जब बताने जा रहा हूं। मित्रों, जो धर्म है बेसिकली, जो कल आइंस्टीन की हम चर्चा कर रहे थे उसमें उन्होंने दो शब्द प्रयोग किए हैं, आपने ध्यान दिया होगा, विस्मय और आनंदानुभूति। उन्होंने कहा कि ईश्वर मेरे लिए इस सृष्टि के नियमों में दृष्टिगोचर, इस पूरे के पूरे संसार के नियमों में जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर का मतलब है जो आंखों को दिखाई दे रहा है, एक अद्भुत, मतलब वो विलक्षण है, समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, आनंदमय, अद्भुत तो है, विलक्षण तो है, लेकिन इस विलक्षणता में आनंद है, इस विलक्षणता में भय नहीं है। इस अब आप देखते हैं ना, जब कोई चीज बड़ी अद्भुत, जादू देखने के बाद हमको क्या होता है, अच्छा ही लगता है, तो उसमें आनंद है और विस्मयानुभूति और आश्चर्यचकितता है। ये बातें उन्होंने कही, यानी कि सच पूछे तो वो जो कह रहे हैं वो यही कि प्रकृति ही मेरे लिए ईश्वर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आइंस्टीन को जो सापेक्षतावाद के सिद्धांत की बात सूझी थी उसका बकायदे रिकॉर्डेड वर्जन है, जो चार्ली चैपलिन की पत्नी ने अपनी तरफ से बताया था और चार्ली चैपलिन की पत्नी को आइंस्टीन की पत्नी ने यह बात बताई थी कि जो सापेक्षतावाद है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, वह कोई आइंस्टीन के कोई खोज, कैलकुलेशन या चिंतन का परिणाम नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मुझे खुद नहीं मालूम कि यह कैसे आया, बस मुझे सूझ गया, मुझे आ गया। और उनके अनमन्नेपन और इसकी विस्तार से चर्चा है, जो बकायदे किताबों में उस वो दर्ज है, वो ऐतिहासिक घटना। तो मित्रों, ये जो अचानक सूझ गया, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे आया, इसके माध्यम से जो आइंस्टीन है वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप सोच करके देखिए। और उन्होंने जो ईश्वर के बारे में कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सापेक्षतावाद का सूझना ही उनके लिए ईश्वर है, या यूं कह लीजिए कि ईश्वर ने ही उनको यह सुझा दिया है, जो भी आप कहना चाहें। क्योंकि दुनिया कैसे चल रही है, कैसे काम करती है, क्या इसमें होता है, ब्रह्मांड क्या है, अंतरिक्ष क्या है, इन्हीं सब की बातों के बारे में आइंस्टीन ने बताने की कोशिश की है, क्योंकि उसके प्रति वो बहुत ही अट्रैक्शन महसूस करते थे, बहुत ही विस्मय रहते थे, लेकिन साथ ही साथ आनंद की भी अनुभूति करते थे। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर कोई चीज अद्भुत है, कोई चीज विलक्षण है, लेकिन वह आपको आनंद नहीं दे रही है, तो मान करके चलिए कि फिर वो आपके किसी काम की नहीं है, आप उससे उस लेवल पर जुड़ ही नहीं पाएंगे जिसे हम आध्यात्मिकता का स्तर कहते हैं, या धर्म का स्तर कहते हैं, या एकाग्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। क्योंकि ध्यान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन ये सब एक ही हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ये भी दोनों एक ही हैं, ये मूलतः आनंद में छिपी हुई है। जैसे ही आपको किसी चीज में आनंद आने लगता है, ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। आप ध्यान लगाते रहिए ना, सूर्य आप दीपक की लौ को देख के ध्यान लगाते रहिए, आप म्यूजिक सुनकर के ध्यान लगाते रहिए, आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको आनंद आता है तो आपका ध्यान नहीं लग जाता क्या? आपको किसी म्यूजिक में आनंद आ रहा है, आप उसी में डूब गए हैं, फिल्म देख रहे हैं उसी में डूब गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसी में डूब गए हैं, तो सौंदर्य देख रहे हैं उसी में डूब गए हैं। तो जहां आपको आनंद आता है, वहां डूबना वाली जो घटना है वो घटित हो जाती है, और वही वो एक ईश्वर तत्व बन जाता है, वही धर्म बन जाता है, वही अध्यात्म बन जाता है। यही बताने की कोशिश यहां आइंस्टीन ने अपने इस वाक्य के द्वारा कही थी। लेकिन हमारे लिए धर्म क्या है? आम जीवन में जो हम सब कर रहे हैं मिलते, हमारे लिए धर्म एक पाखंड बन गया है, एक सर्टिफिकेट बन गया है, या कह लीजिए कि अपने सीने पर लटकाए जाने वाला एक तमगा बन गया है, इससे अधिक कुछ नहीं। आचरण खत्म हो गया है, विस्मयानुभूति खत्म हो गई है, आनंद का वह तत्व खत्म हो गया है। आनंद की जगह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि धर्म घृणा का तत्व बन गया है? आप देखिए, इतिहास मौजूद है मित्रों कि इस धरती पर धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं उतने सत्ता के नाम पर नहीं हुए हैं। धर्म युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं, याद रखिए, उतने लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं मारे गए हैं। धर्म जो आनंद देता है वो युद्ध का कारण बन रहा है, लोगों को मारने का कारण बन रहा है। आप कल्पना करके देखिए कि जिस जो म्यूजिक आपको आनंद दे रहा है, उस म्यूजिक को, उस जो जहां से म्यूजिक आ रही है, आप उसको तोड़ के फेंकेंगे, या कि कोई छीनने का की कोशिश करेगा तो आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो भी चीज आपको आनंद देती है उसके आप रक्षक बन जाते हैं, और आपका धर्म आपको आनंद दे रहा है और आप दूसरों के धर्म के भक्षक बनते हैं। लगता है कि नहीं, इसे हमारे धर्म में शामिल होना चाहिए, इस हमारा धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है, तो ये क्या है? ये धर्म है या कुछ और है? ये तो फिर विचारों का युद्ध हो गया, धर्म का तो युद्ध नहीं है। धर्म तो सीधे सीधे आचरण से जुड़ा हुआ, आनंद अनुभूति तो वही है ना, वो तो अनुभूति से जुड़ा हुआ तत्व है। और बौद्ध धर्म ने क्या किया मित्रों? जो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी को मुझे लगता है कि आप सबको पढ़ना चाहिए, गंभीरता से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बौद्ध धर्म के साथ एक बहुत खूबसूरत बात है कि उनकी जातक कथाओं को पढ़िए, उन जातक कथाओं में बड़ी खूबसूरत कहानियां, कथाएं ही हैं, और उन कहानियों से मैसेज निकल करके आता है, और बहुत स्पष्ट रूप से वो संदेश निकल करके आता है, उसकी कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी पंचतंत्र की कहानियों से संदेश निकलते हैं, मैसेज निकलते हैं, गौतम बुद्ध की जातक कथाओं से भी उसी तरह से संदेश निकलते हैं। वो सारी की सारी कथाएं जीवन से जुड़ी हुई कथाएं हैं, जीवन में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है वो बताती हैं वो कथाएं। और सच पूछे तो वो यही कहती हैं, जीवन को सही तरीके से जीना ही धर्म है। और वो सही तरीका क्या है? वो बौद्ध धर्म का, या कह लीजिए बौद्ध दर्शन के विचार है। दैट्स ऑल। इसीलिए बौद्ध धर्म के मानने वालों ने चूंकि जीना सीख लिया, धर्म को जीवन में उतार लिया, उसी के अनुसार आचरण करने लगे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हुआ कि वो धर्म उनके समृद्धि का कारण बन गया, उनकी भौतिक समृद्धि का कारण बन गया, क्योंकि अब वो पाखंड का जीवन नहीं जी रहे हैं, अब वो प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं। प्रोग्रेसिव लाइफ का मतलब भी है मित्रों उन्नतशील जीवन, प्रगतिशील जीवन, यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उस समय के अनुकूल आपका आचरण भी बदल रहा है, आपके विचार भी बदल रहे हैं, आपके सामाजिक मूल्य भी बदल रहे हैं, और यही धर्म है। जैसे अभी ठंड के दिन आ गए हैं तो आपका धर्म क्या है? क्योंकि दिन बदल गए हैं तो आपके शरीर पर स्वेटर आ गया है, और जब आप मई जून में पहुंचेंगे तो पता लगता है कि शरीर की बनियान भी भारी लगने लगती है। ये क्या है? कर रहे हैं ना हम, समय के अनुकूल हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? अभी आप छाता लेकर के नहीं चल रहे हैं, बल्कि जहां अगर किसी ने आपके सिर पर छाता रख दिया तो आप उसको डांटेंगे कि भैया सूरज की रोशनी पड़ने दो, धूप आने दो। और बरसात में बारिश नहीं हो रही है, आप ऐसे ही जा रहे हैं लेकिन हाथ में छाता लेकर के जा रहे हैं कि पता नहीं कब कहां बारिश आ जाए। तो अभी वो छाता आपके लिए बेकार है, और बरसात में जरूरत न पड़ने पर भी छाता अनिवार्य है। तो दोस्तों छाता तो वही है, तो अभी अस्वीकार है और उस समय अनिवार्य है, ये क्यों हुआ? समय की वजह से हुआ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, उस समय बरसात का मौसम होगा, तो समय के हिसाब से आपने छाते के वैल्यू को बदल दिया, छाते की उपयोगिता आपकी बदल गई। तो जब हम, मुझे लगता है मित्रों की रोज के जीवन में हम यही सब कर रहे हैं, समय के हिसाब से चीजों को बदलते रहते हैं। तो यार क्या ऐसी क्या बात हो गई कि समय के हिसाब से फिर हम अपने जीवन मूल्यों को नहीं मैं जीवन मूल्यों की यह बात नहीं कह रहा हूं कि सत्य को बदल दीजिए, शांति को बदल दीजिए, प्रेम को बदल दीजिए, ये तो शाश्वत मूल्य है। वैसे जैसे कि सूरज नहीं बदलता है, बरसात हो या गर्मी हो, सूरज तो निकलते ही निकलता है ना, वो शाश्वत सत्य है। सूरज का निकलना, सूरज का डूबना शाश्वत सत्य है। इसी तरह से हमारे जीवन के भी कुछ मूल्य ऐसे हैं जो शाश्वत है, जो नहीं बदले जा सकते, नहीं बदले जाने चाहिए। लेकिन ये जो ऊपरी चीजें हैं जिन्हें हम गलती से धर्म मान बैठे हैं, इनमें क्या रखा है? तो मित्रों यही बात आइंस्टीन ने अपने इस ईश्वर संबंधी विचारों में कही है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस पर मुझे थोड़ी सी और व्याख्या करनी चाहिए, और वो व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। ये मेरी व्याख्या है, प्लीज आप लोग अपनी अपनी व्याख्या अपने अपने ढंग से करें। मेरा तो केवल एक ही निवेदन है कि धर्म को अपने जीवन का आधार बनाएं, जीवन के आनंद का आधार बनाएं, जीवन के विकास का आधार बनाएं, जीवन को खूबसूरत तरीके से जीने का आधार बनाएं, और मुझे लगता है कि यही धर्म है। तो मित्रों इसी के साथ ही आज के लाइफ मैनेजमेंट को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।